नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रदेश में 100 नगर निकायों के लिए कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा मतदान, सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रीय खेलों के दौरान खिलाड़ियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 141 टीमों का गठन। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करने के आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा है कि इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लड़के लड़कियों के भेदभाव को दूर करने में मदद की तथा लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। श्री मोदी ने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की ताकि बेटियां बिना किसी भेदभाव के प्रगति कर सकें। सुकन्या समृद्धि योजना के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने बताया है कि देश में सुकन्या समृद्धि योजना में 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। ये योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कच्चे पटसन के लिए प्रति क्विंटल 5,650 रुपये का MSP प्रदान किया जाएगा, जो पिछले विपणन सत्र 2024-25 की तुलना में 315 रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के 40 लाख परिवारों को मदद मिलेगी जो कच्चे पटसन के उत्पादन में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हासिल प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने पहले के निर्णय के अनुसार अगले 2 वर्षों तक इसका कार्यान्वयन जारी रखने का निर्णय लिया है। 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन को 2026 तक 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। प्रदेश की 100 नगर निकायों के लिए कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
100 नगर निकायों में निर्वाचन हो रहा है, जिसमें कुल 1282 वार्ड हैं जिनमें चुनाव हो रहा है प्रदेश में, और इसमें 1,515 मतदान केंद्र हैं और 3,394 पोलिंग बूथ है। इस प्रकार कल 23 तारीख को प्रातः 8 बजे से और शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा और प्रदेश में कुल 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इस नगर निकाय चुनाव में। शांति व्यवस्था की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से सारे जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। पर्याप्त सुरक्षा बल जनपदों में पहुंचा दिया गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के लिए 16,284 मतदान कर्मी और 25,800 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं।
प्रदेश में जो निर्वाचन हो रहा है उसमें कुल 16,284 मतदान कर्मी पोलिंग पार्टीज में लगाए गए हैं। इसके अलावा 25,800 सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। जो वाहन हैं पार्टीज को लाने के लिए, ले जाने के लिए और लाने के लिए पोलिंग बूथ पर, उसमें 846 हल्के वाहन हैं और 572 भारी वाहन लगाए गए हैं। इस प्रकार पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। बागेश्वर जिले में पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगाई ने पोलिंग पार्टियों का निरीक्षण किया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कल पोलिंग का डे है, तो आज यहाँ पर जो हमारी पोलिंग पार्टीज है वो यहाँ पर आई है, उनको जो सामान दिया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। वो अपने सामान को अभी उसकी चेकिंग कर रहे हैं और उसे मिला रहे हैं, सभी सामान सही पाया गया, पर्याप्त मात्रा में सामान उपलब्ध है, और फिर आज ही पोलिंग पार्टी रवाना हो जाएंगी और अपने गंतव्य स्थान तक अपने अपने मतदेय स्थलों तक पहुँचेंगी, और मतदान की सारी तैयारियाँ पूरी करी जा चुकी हैं और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी सभी को निर्देशित किया गया है।
उधर पिथौरागढ़ जिले में भी पोलिंग पार्टियां विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। जिले की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि सभी पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
स्थानीय नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत कल ब्रीफिंग की जा चुकी है, आज डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टी भी रवाना की जा चुकी है। इस निकाय के सफल समापन के रिगार्डिंग पुलिस द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें 2 राजपत्रित अधिकारी अलोंग विद 800 के आसपास हमारे पुलिस कार्मिक भी इसमें तैनात किए गए, जिसमें पुलिस के साथ साथ हमारे होमगार्ड पीआरडी और फॉरेस्ट के जवान भी इसमें सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त अराजक तत्वों पर भी हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है, साथ ही साथ जो 48 घंटे पूर्व की एसओपी है वो भी इन्वोक हो गई है, उसका भी अनुपालन किए जाने हेतु सभी को बताया गया है और उस अनुरूप पुलिस अपने जो कार्य है उसमें अड़िग है।
प्रदेश के अन्य जिलों में भी पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। प्रदेश के 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान खिलाड़ियों और मेहमानों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए 141 टीमों का गठन किया गया है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये टीमें अलर्ट मोड में रहेंगी। इस दौरान जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और हेली एम्बुलेंस तक की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम के धनवंतरी ब्लॉक में 10 बेड का अस्पताल खिलाड़ियों के लिए संचालित किया जाएगा। इसी तरह IGICS स्टेडियम गोलापार हल्द्वानी में 2 बेड का अस्पताल संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य के लिए गौरव का क्षण है, खिलाड़ियों और मेहमानों को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी में खेल विभाग खिलाड़ियों के लिए तैराकी का विशेष प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। प्रशिक्षण में उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा और प्रदर्शन के लिए स्विमिंग पूल में विशेष पूल हीटिंग सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि ठंड के मौसम में भी खिलाड़ी बिना किसी बाधा के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर स्विमिंग पूल तैयार किया गया है और अब उत्तराखंड तैराकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा प्रबंधन विभाग को प्रदेश में आपदाओं से निपटने व बचाव के लिए रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसमें गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और निजी विशेषज्ञों के सुझाव भी शामिल करने को कहा है। वे आज सचिवालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडई जापान फ्रेमवर्क का राज्य में क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही थी। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य देशों और राज्यों के मॉडल को अपनाने के बजाय उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन मॉडल तैयार करने की अधिकारियों को हिदायत दी। मुख्य सचिव ने राज्य में 65,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 10 लाख से अधिक महिलाओं को भी आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन प्रशिक्षित महिलाओं को आपदा सखी का नाम देते हुए आपदाओं के दौरान ग्राम और तहसील स्तर पर इनकी सहायता राहत व बचाव कार्यों में लेने को कहा है। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर नई दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में श्रेष्ठ 3 राज्यों में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिलने पर पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड गठन के बाद राज्य की झांकी के कलाकारों को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक और टीम लीडर KS चौहान के नेतृत्व में राज्य से 16 कलाकार भाग ले रहे हैं। श्री चौहान ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले कलाकारों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष उत्तराखंड द्वारा सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल की थीम पर झांकी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रदेश में 100 नगर निकायों के लिए कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा मतदान, सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रीय खेलों के दौरान खिलाड़ियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 141 टीमों का गठन और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करने के आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।